que tu caïn, hein?
Sauf où est-ce que tu
caïn? Oui, tu caïn, hein?
Qu'est-ce que tu caïn?
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہماری گلرخ ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں کرٹس بائنم. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں جو انڈیا کے شہر بامبے سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ایک جھلک سنتے ہیں ان کی، تو آواز کی تو نہیں لیکن ان کی تخلیق کی.
تو یہ تمہارے پاپا ہیں؟
یس میڈم.
ایسی رونی صورت بنا کے کیوں بول رہے ہو؟
میں سمجھا آپ اس بات پر مجھ کو پنش کریں
گے.
میڈم بٹو بہت پیار کرتا ہے آپ کو، بہت تعریف کرتا ہے آپ کی، کہتا ہے کہ ٹیچر ہو تو ایسی ہو، بہت زیادہ چاہتا ہے آپ کو ایک دم ماں کی طرح. اور تو اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سب سے اچھی، سب سے زیادہ پاپولر ٹیچر اسکول میں ہے تو وہ یہ ہے. یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پچھلے مہینے آپ کو اسکول کی بیسٹ ٹیچر کا اوارڈ بھی ملا ہے.
پچھلے مہینے؟ لیکن میں تو
پچھلے ہفتے ہی جوائن کیا. تو سامعین یہ ایک سیریل ہے جو لکھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان جن کا نام ہے منوج سنتوشی. ان سے ان کے سیریلس کے بارے میں اور کیا کچھ کرتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. بامبے سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم منوج صاحب. آداب.
وعلیکم السلام جی.
کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہیں؟
بس ایک دم خیریت ہے. آپ کیسے ہیں؟
بس یہاں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور کافی خوش ہیں ہمارے سننے والے، بہت سے فیس بک پر خوش آمدید کہا ہے آپ کو ہمارے سننے والوں نے آپ کی.
جی جی میرا آداب کہیں ان سب کو، میری طرف سے بڑا محبت بھرا آداب سبھی کو، سننے والوں کو.
اور سامعین ہم آپ کو بتا دیں ان کا آداب آپ قبول کیجیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ پروگرام کے دوران ہمیں فون کر سکتے ہیں 0800-77789 پر. اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے جو انڈیا کے سننے والے ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ شناسا ہوں گے منوج سنتوشی صاحب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب یہ نیٹورکس جو ہیں باہر بہت مقبول ہیں، مثلا میں ان کی یہ جو جس کی میں نے ایک جھلک سنائی بھابھی جی گھر پر ہیں، یہ میں بھی دیکھتی ہوں یہاں امریکہ میں. تو منوج صاحب کہاں کہاں سے پیغامات ملتے ہیں آپ کو اپنے پروگراموں کے بارے میں؟
جی مطلب تمام کنٹریز سے ہمیں مطلب کمپلیمنٹس آتے ہیں کہ وہ ہمارا شوز دیکھتے ہیں. پاکستان کے کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ عزیز ہیں جو یہ شو بہت پسند کرتے ہیں. کراچی ہو یا لاہور ہو، بڑے بڑے شہروں سے پاکستان، ملک امریکہ اور لندن، یو کے، تو تمام جگہ سے ہمیں پیغام آتے ہیں کہ آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے اور آپ لوگ ہنسانے کا کام کر رہے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے حسین کام ہے، ہنسانا لوگوں کو، ان کی چہرے پر خوشی لانا، تو بڑا خوشی ملتی ہے ہمیں.
مجھے میں اس سے بہت اتفاق کر روز بروز زیادہ کرنے لگی ہوں اس بات سے، ہنسانے والی بات سے. ایک ایسا زمانہ تھا کہ جیسے ٹریجڈیز جو ہوتی تھیں، جو دنیا کے بڑے بڑے کلاسکس ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان میں شاید وہ المیہ زیادہ ہیں، لیکن کچھ منوج ایسا دنیا دکھوں سے بھر گئی ہے اور اتنی پریشانیاں ہیں اور یہ دہشت گردی اور اتنی مصیبتیں کہ لوگوں کو ایک میرا خیال ہے ریلیف کی ضرورت ہے. تو کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ حالیہ برسوں میں، یعنی اگر ہم گزشتہ 10 برسوں میں دیکھیں تو کامیڈی کی طرف رجحان بڑھا ہے لوگوں کا، یا یہ محض میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہے؟
نہیں دیکھیے لوگ تو ہنسنا چاہتے ہیں، لیکن بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو میکرز ہیں، ہمارے جو رائٹرز ہیں، تو میرے خیال سے وہ اس پر زیادہ کام نہیں کرتے ہیں. تو اب آڈینس کو جو دکھائیں گے آپ وہی دیکھے گی. اگر آڈینس کو آپ یہ تمام جو رونے دھونے والے شوز ہیں وہ دکھائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے، وہ تو بیچارے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. تو اگر آپ کامیڈی اگر دکھائیں گے اور اچھی کامیڈی دکھائیں گے تو ضرور اس چیز کو انجوائے کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں جو کامیڈی کا، پچھلے 10 سالوں میں ہی نہیں بلکہ بہت پہلے سے اچھی کامیڈی کا لوگوں نے جو ہے استقبال کیا ہے. مثلاً ایک شریمان شریمتی ایک شو آتا تھا سے تقریباً 15-16 سال پہلے، ہمارے ہندوستان کے جو چینل ہے دوردرشن، उस पर आया करता था तो उसको लोग बहुत पसंद किया करते थे। फिर यस बॉस एक शो था जो सब टीवी पर सोनी सब पे आया करता था, उसको लोगों ने बहुत 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 पसंद किया, मतलब देशों में विदेशों में सब सब जगह बहुत पसंद किया गया। तो ये 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, एक दौर था उस जमाने में जब क्लासिकल शोज बनते थे। मुझे अभी एक और 89 के एक शो का जिक्र मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, जो पाकिस्तान की पीटीवी पर आया करता था और मेरा बहुत ही आज भी वो पसंदीदा शो है, और उसका नाम है आंगन टेढ़ा।
हाँ, बहुत ही शगुफ्ता, वो भी बड़ा शगुफ्ता शो था,
बहुत ही लाजवाब और बहुत ही उम्दा शो, और ऐसी कॉमेडी तो मैं कह रहा हूँ, इतनी क्लासिक कॉमेडी मैं कह रहा हूँ आज तक नहीं आई और ना आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने उम्दा कलाकार थे उसमें, इतने उम्दा जो कैरेक्टर्स थे, चाहे वो जो सर्वेंट का रोल करते थे साहब, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही उम्दा फनकार थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे, बहुत बहुत अच्छे अदाकार थे।
अच्छा, तो ये मैं पूछूंगी आपसे कि ये तो आप ये वहाँ पे दिखाए जाते हैं किसी नेटवर्क्स पे, पाकिस्तान का मसल जो प्रोग्राम था, या आप लोग यूट्यूब पे या किसी और जरिए से देखते हैं?
जी, पहले तो पहले जब ताल्लुकात हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के काफी अच्छे थे, आज से 15-20 साल पहले तो उस तरह की कोई बात नहीं थी, तो पीटीवी हिंदुस्तान में आया करता था
जी।
पीटीवी पे हमने ये शोज देखे थे, बकरे किश्तों पे देखा था हमने, और ये आपका ये जो शो है आंगन टेढ़ा भी आता था, और एक शो और था बहुत ही खूबसूरत शो था वो तन्हाइयां। ये शोज तो हमने पीटीवी पर उस वक्त देखे थे, लेकिन हाँ उससे ताल्लुकात जो है वो जब खराब हुए हैं तो फिर हम फिर यूट्यूब पे ही महदूद रह गए हैं।
अच्छा, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ दूँ आपके लिए। सलीम अली मिन्हास, शोएब हसन निहाले का, नायक आलम और पठान बारामूला कश्मीर से सैयद बशारत, इन सब ने आपको बहुत खुश आमदीद कहा है और ख़ुशी का इजहार किया है आपकी प्रोग्राम में आमद पर। तो अपने सामीन की तरफ से अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे बातें करें कहाँ से आपके फ़न का आगाज़ हुआ, एक थोड़ा सा वक्फ़ा।
मैं जानता हूँ आप मेरी सासू माँ, जानता हूँ मैं, लेकिन आप बीच में अपनी टांग मत लाया कीजिए, क्योंकि इस घर में मुझे आपसे कोई मदद नहीं मिलती है।
देखा मेरे बारे में कैसी बातें हो रही है इस घर में।
मोहन, तुम क्या चाहते हो, मम्मी बिट्टू का होमवर्क ले?
ना बिल्कुल नहीं, अगर मम्मी ने बिट्टू को होमवर्क लिया ना तो मेरा बिट्टू है ना वो फेल हो जाएगा।
फेल तो तब होगा जब तुम उसका होमवर्क करवाओगे। मैंने जिसका होमवर्क करवाया था उसका नतीजा तो सारी दुनिया देख रही है। एक बड़ी कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर है।
किसकी बात कर रही हैं आप?
समझे, तुम्हारी तरह वो चश्मा लगाई हुई जूनियर विजुअलाइजर नहीं है वो।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
तो ये झलक जो थी ये आपके प्रोग्राम यस बॉस से थी, और बॉस जो थी वो एक शोहर की बीवी जो उनकी बॉस थी। मैंने ये देखा आपकी कॉमेडी में थोड़ा सा कुछ ससुराल के साथ और कुछ मियां बीवी के आपस की जो नोकझोंक है ये ज़्यादा होती है, तो आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत से पता लगा कि अभी आपने शादी नहीं की, तो कहीं यही तो वजह नहीं कि आपको यही डर रहता है कि कहीं यही सब शुरू ना हो जाए घर में?
जी, मैं कह रहा हूँ कि मतलब जब आदमी वो क्या होता है कि आदमी शादीशुदा होता है तो उसकी सारी जो मिजा है वो निकल जाती है, वो ट्रेजेडी रहती है उसकी लाइफ में।
सही बात है।
नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मतलब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कब किसकी किस्मत जो है किसके साथ जोड़ता है, तो बस हम इंतजार में है, कोई अच्छा साथी मिल जाएगा तो जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे।
बस मैंने जब फेसबुक पे देखा और जब देखा कि एक जगह ताजमहल की फोटो तो है लेकिन ताजमहल के आगे आप किसी के साथ नहीं है, तो मैंने समझ गई कि ये अभी अकेले हैं।
जी 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 जी।
तो मनोज, थोड़ा सा जरा शुरू से बताइए अपना, कहाँ से शुरू हुआ आपके सफर का आगाज? एक तो मैं तारीफ करूंगी, आप जहर लिखते हैं, राइटर हैं, मगर आप बोलते भी बहुत अच्छे हैं आपकी मैं देख रही हूँ जी। तो ये जबान दानी जो है आपकी उर्दू में, ये सब कहाँ से सीखा आपने?
ये देखिए, मेरा ताल्लुक जो है वो उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, जो स्टेट है हिंदुस्तान का, बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो ये वहाँ पे एक अलीगढ़ शहर है
जी,
और अलीगढ़ के बारे में तो
यूनिवर्सिटी वहाँ की
जानते हैं,
बिल्कुल
बहुत ही मशहूर है वो पूरे वर्ल्ड में, चूंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो आगा खान साहब ने बनवाई थी
जी।
तो वहाँ जो है जो वहाँ का अदबो अदब है अलीगढ़ का वो काफी फेमस है, वो यूनिवर्सिटी से ही निकलता है। तो मेरा जो उठना बैठना रहा, जो मेरी जो बचपन जो गुजरा मेरे, तो तमाम जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में गुजरा, तो बस उन्हीं की देन है ये मेरी जो जबान है बस। उसके बाद फिर अलीगढ़ में तालीम हासिल करने के बाद में फिर मेरा जो है बॉम्बे आना हुआ, क्योंकि बॉम्बे से हमारा ताल्लुक मेरे फादर के जमाने से रहा है। मेरे फादर जो है यहाँ बॉम्बे में जॉब किया करते थे लेकिन बड़ी मेरी बदकिस्मती रही कि वो जल्दी ही उनका साया हमारे सर से उठ गया। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, बचपन में ही, और 79 में वो हमें छोड़ के चले गए। उसके ठीक 10 साल बाद वहाँ भी जो है हमें छोड़ के चली गई 89 में।
अच्छा।
लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आज भी हमारे साथ है। और बस मेरा सिलसिला फिर यहाँ से जो शुरू हुआ, मैं माँ और पिताजी के गुजरने के बाद, अपने वालिदैन के गुजरने के बाद मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में फिर मैंने थिएटर की शुरुआत की यहाँ पर, और मेरी अच्छा। मुलाकात जो है मेरे अजीज दोस्त हैं मिस्टर अनूप उपाध्याय, वो भी बहुत अच्छे कार हैं, हिंदुस्तानी टेलीविजन पे बहुत ही नामी गिरामी चेहरा है उनका, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके जरिए फिर मैं हिंदुस्तान के थिएटर की एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम है मिस्टर हबीब तनवीर।
अच्छा, नया थिएटर ग्रुप जो है,
नया थिएटर ग्रुप।
हाँ, अच्छा।
उन्होंने पाकिस्तान में भी काफी शोज किए हैं, अमेरिका में किए हैं, लंदन, मतलब पूरे देश विदेशों में उनके जो है शोज गए हैं। तो वहाँ फिर मिस्टर अनूप उपाध्याय के जरिए मैं हबीब साहब से मिला और वहाँ जो है उनसे मैंने वहाँ पे थिएटर की शुरुआत की और मेरी बड़ी बारीकी से जो मैंने वहाँ पे बड़ी बारीकियाँ जो है एक्टिंग की और बहुत सारे, मतलब वो तो एक अपने आप में स्कूल थे हबीब साहब। तो वहाँ पे राइटिंग भी और वहाँ की उर्दू जबान के जितने प्लेज उनके जो हुआ करते थे, तो वो करने के बाद में जबान की जो हमारी जो इम्प्रूवमेंट था और ज्यादा अच्छा हो गया।
अच्छा।
उसके बाद वहाँ पे चूंकि एक प्ले था वहाँ पे नजीर अकबर आबादी साहब के बारे में तो आप जानते ही होंगे।
जी हाँ, बिल्कुल, शायर हैं,
बहुत बड़े शायर थे।
बिल्कुल।
हाँ, तो उनकी गजलों के और नज्मों के का ताना बना बुनकर के हबीब साहब ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था आगरा बाजार।
अच्छा।
माशाल्लाह बहुत बहुत फेमस प्ले रहा है और बहुत जहाँ भी किया है उन्होंने, जर्मनी हो या लंदन हो या अमेरिका हो, सब जगह बहुत बहुत उसको जो है तारीफें मिली हैं, तालियां मिली हैं। वो शो में मैं फकीर का रोल किया करता था।
अच्छा।
और उसमें जो उनकी नजीर साहब की जो गजलें हैं, जो नज्में हैं, वो मैं गाया करता था उसमें।
तो कोई एक, आप तो गाते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मैं अपनी फरमाइश रखती हूँ, इससे पहले एक हमारी कॉलर बहुत देर से आपसे बात करने के मुंतजर है, नजमा नौशाही फैसलाबाद से, उनसे आप बात कर लीजिए, फिर ये याद रखिएगा मेरी फरमाइश। जी नजमा, अस्सलाम वालेकुम।
जी
जी जी जी, वालेकुम सलाम नजमा, कैसे हैं?
आपको भी और मौजूद मेहमान को भी वेलकम कहते हैं। अभी इनके मुंह से हमने सुना पाकिस्तानी प्लेस के बारे में कि ये वहाँ देखते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई सब कुछ मुझे सुनकर के पाकिस्तान के ड्रामा जिनमें बहुत ज्यादा मकबूल है और ये काम भी कर रहे हैं बहुत अच्छा। सिर्फ मेरा एक सवाल है इनसे
जी, जी।
कि जो ये काम कर रहे हैं, क्या उससे जहन, नजर, दिल कुछ बदला जा सकता है?
मुझे थोड़ा समझ नहीं, क्या आपने पूछा? जो काम ये कर रहे हैं उससे क्या बदला जा सकता है?
उससे आपका दिल, आपका जहन, आपका नजरिया,
अच्छा।
आपका जो जहन है, क्या उसको बदला जा सकता है?
जी जरूर। मैं आपने इनका सवाल सुना मनोज?
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आपने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा सवाल है आपने, बहुत खूबसूरत सवाल है कि आपका सवाल है। जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो हम आज के दौर में जो चीजें लिख रहे हैं उससे आज के दौर का जो मसला है वो बदला जा सकता है।
जी हाँ, यानी इंसानी जहन को, आप खासतौर से आपकी तहरीरों से।
जी, मतलब ये जो माहौल चल रहा है, मतलब
जी जी, जो भी मतलब सोसाइटी है उसमें कोई तब्दीली।
देखिए क्या है ना, देखिए ये सब देखने वालों के नजरिए पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है
जी।
ये क्या है ना, हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम सोसाइटी को अपनी चीजों से खुश करें,
जी,
उन पर एक अच्छा असर तारी करें, उनको एक अच्छी चीज दें, उनको देख हमारी चीजें देखने के बाद, हमारी जो क्रिएशन है उसको देखने के बाद उनको खुशी मिले। और भाई बदलना ना बदलना तो उनके हाथ में है कि अगर वो चीज, अगर वो उनका अपना दिमाग है, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो एक शेर है मैं सुनाना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो जो अच्छे लोग हैं, जो अमन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपनी कुछ ऐसी चीज पेश करें जिससे कि हालात को बदला जा सके, अमन के रास्ते तय हों, अमन के रास्ते बने और सब जगह खुशहाली हो, दोनों मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर से बेहतर बने।
मेरा ख्याल का सवाल ये था कि ये तो आपने एक आम जो इस वक्त बदमनी है ये सारी चीज़ें इस पर बताया, लेकिन मैं नजमा से कहूँगी कि इनके एक मैं सुन रही थी चंदा कानून, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें जो मिज़ा है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये बात नज़र आई कि उसमें जो तंज भी है, सटायर भी है, जो माशरे की चीज़ें हैं, और वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि एक लतीफ़ अंदाज में। बल्कि मुझे पहले आप मेरी फरमाइश पूरी कर दें तो फिर मैं इससे मुतालिक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आपसे शोएब हसन निहालिका ने पूछा है कि क्या आपने फिल्मों में भी काम किया है, और इनके अलावा आपके लिए कई पैगाम है। फारूक भट्ट ने कहा है कि हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत पसंद किया जाता है फनकारों को, ये चाहते हैं मैंने फ़ोन कर लें, तो अगर हमें आपको फ़ोन मिला हम ज़रूर आपसे बात करवा देंगे जी। तो अब आप मुझे बताइए कि वो जो गाना आप कह रहे थे कि आपने उसमें गाया फ़कीर के तौर पर,
जी नज़ीर अकबर आबादी साहब का कलाम है ये, जिसका नाम है आदमी नामा।
जी वो भी याद
है तो मैं जरा इसको गुनगुना लेता हूँ।
जी सर।
दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। एक कथा और है इसका
जी,
कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, और उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी।
क्या कहने नज़ीर साहब, वैसे मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, जिस जो एक सादगी और जिस तरह कितनी बड़ी बड़ी बातें सादा अल्फाज में कह देना। अच्छा, यहाँ बल्कि मैं ये सोच रही थी कि जब आपने हबीब तनवीर साहब के साथ काम किया तो जो ट्रेंड है उनके थिएटर का, फिर आपने जो चुना अपने लिए मैदान, वो उससे मुख्तलिफ है, तो कहाँ किस कौन सी वो आपकी तख्लीक है जिसमें हमें हबीब तनवीर साहब की छाप नजर आती है?
जी देखिए मैंने जो जहाँ तक उनके जो ड्रामे थे उसमें जो है मिजाह भी था।
जी हाँ
बिल्कुल उसमें मिजाह भी था, और उसमें जो है संदेश भी हुआ करता था, एक पब्लिक को मैसेज भी हुआ करता था, मिजाह भी हुआ करता था। तो अच्छा, अब चूंकि मिजाज हमारा कुछ मिजाह वाला था तो वहाँ जो चीज़ें हमने वहाँ के मिजाज को हमने चूँकि कुछ खून में था और कुछ हमने वहाँ से चीज़ें ली, और जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं या कोई हमारा सीन होता है तो उसमें ज़रूर हबीब साहब की छाप नज़र आ जाती है।
अच्छा, तो कभी हबीब साहब आपकी कोई चीज़ें सुन के कोई तबसरा करते हैं आप पे?
हबीब साहब तो अभी इस दुनिया में नहीं है,
जब वो थे, जाहिर है आप तो काफी अरसे से काम कर रहे हैं।
जरूर मतलब हमें बहुत हमारे ड्रामों को देख करके हमारी कुछ कमियां भी निकालते थे और कुछ अच्छी चीजों पर हमें बहुत डांट भी मिला करती थी, और चूंकि उस्ताद थे हमारे तो वो ज्यादातर कमियां निकालते थे और हमें डांट भी दिया करते थे कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया करिए।
तो क्या मसलन कोई चीज हमें बताइए ताकि हमें पता तो लगे आपको डांट काहे पे पड़ी।
नहीं वो हमेशा मतलब देखिए उनकी डांट में भी एक मोहब्बत हुआ करती थी, तो जैसे कुछ कुछ चीजों पे मतलब मुझे क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मैं यस बॉस लिखा करता था, तो यस बॉस जो मेरा शो था तो उसमें कुछ एक सीन हमने ऐसे दिखाया आयुष साहब को, चूंकि टेलीविजन तो वो देखते नहीं थे, हमने कहा सर हम, और हमें ये उम्मीद थी कि इस पे शायद डांट मिलेगी, तो उन्होंने कहा ये ऐसे 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 कैसे हो सकता है यार, आप मतलब जो है इनसे ये दूसरे की बीवी पे लाइन मार रहे हैं और आप ऐसे इस तरह से, तो उन्होंने
आपके ड्रामों में ये हरकतें बहुत नजर आती हैं, वैसे मैंने ही देखा ये भाभी जी घर पे तो मुसलसल यही किस्सा चल रहा है, दोनों पड़ोसी एक दूसरे की बीवियों पर नजर रखे हैं।
जी 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 जी, देखिए क्या होता है, हाँ इसके इससे मुतालिक अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे।
नहीं मैं तो, मुझे तो आपका जो एक बेसाख्त की है बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो मजा आता है, और जाहिर है कि ये हकीकत में भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। तो अच्छा मैं कॉलर को ले लूँ, मोहम्मद तारिक चुगताई है हमारे साथ, मैं दरख्वास्त करूँगी सवाल मुख्तसर रखे आप लोग। जी तारिक चुगताई साहब जी, वालेकुम सलाम भाई,
मेहमान को वेलकम। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि उन्होंने अब तक ये जो जितना काम किया वो कौन सा काम है जो उनको बहुत याद आता है और बहुत अच्छा उन्होंने उनको महसूस किया।
जी जरूर, ठीक है शुक्रिया। अभी मैं ये सवाल आपका पूछती हूँ, और शौकत अली अंजुम डारावाला।
अस्सलाम वालेकुम।
जी जी वालेकुम सलाम।
पहले तो मैं मैनोल संतोषी साहब को सलावत करता हूँ, और दूसरी ये गुजारिश करता हूँ कि खुद ही आ जाएगी मंजिल तेरे रूबरू, पहले अपने दिल के दिल में मंजिल की अदा पैदा कर। बादर से ये है कि ये कोशिश करें तो ये काफी आवाम में तब्दीली ला सकते हैं, अगर मतलब आवाम को तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह लोग हम सब एक ही है, एक ही इलाके के रहने वाले, एक ही जबान अक्सर जबान उर्दू बोलने वाले हैं, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे को समझाते, हम आपस में लड़ाइयां खत्म करके आपस में लोगों को मिलाने।
जी जरूर शौकत साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और मैं क्योंकि उन्होंने तो कोई मतलब सिर्फ आपके बारे में आप तारीफ की और तबसरा किया, लेकिन तारिक चुगताई साहब ने पूछा है कि कौन सा काम अपने आज तक की जो कुछ आपकी तख्लीक है उसमें आपको दिल से पसंद है।
जी जी, मुझे दिल से अपना क्रिएशन होता है वो अपने बच्चे के जैसा होता है, तो सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी जो भाभी जी घर पे हैं, जो मेरा जो शो चल रहा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, चूंकि इस शो के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत बहुत पापड़ बेले इस शो को यहाँ तक इस मुकाम तक लाने के लिए। मैं और मेरे जो अजीज हैं जो इस शो के डायरेक्टर हैं मिस्टर शशांक बाली, हम दोनों ने बहुत बहुत कड़ी मेहनत की और इस शो को हम इस मुकाम तक लेकर आने में सफल हुए।
अच्छा,
तो ये और दूसरी बात ये है कि जो चीजें हम कहना चाहते थे पिछले 10-12 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब हमारा बहुत ही खराब दौर था उस दौर से गुजर रहे थे, और हम अपनी अपनी चीज जो हमारे जहन में और जो हमारे दिल में ये चीज हम अपने अपनी मतलब एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो चीज हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। हम जिस भी प्रोड्यूसर के पास या किसी चैनल के पास अपनी चीजें लेकर जाते थे तो वो लोग जो है हमारे जो वो कह रहे थे कि नहीं 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 ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, तो हम अपने दिल में जो है वो घुटन सी महसूस करते थे कि पता नहीं ये चीजें हमारी कब आएंगी कैसे आएंगी, चूंकि हमने बरसों से पाला हुआ था इन चीजों।
जी हाँ।
लेकिन जब फाइनली ये चीजें एक नए चैनल पर जी टीवी के एन टीवी पर ये जब चीजें आई और सबने देखा और सबने बहुत ही मोहब्बत के साथ इसको कबूल भी किया और इसका स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि चलिए मेरे जो दिल की बात थी वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने उसे पसंद भी किया। और हमारा मकसद जो है वो किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं, सिर्फ हंसाने का मकसद है हमारा।
हाँ नहीं नहीं, आपका कोई दिलासारी वाला नहीं होता प्रोग्राम, मतलब कहीं ना कहीं तो किसी के दिल पे लग जाती होगी, लेकिन वो तो एक तरह से लगनी भी चाहिए, कोई ना कोई बात तो जाएगी। अच्छा प्रमोद अग्रवाल है हमारे साथ। जी प्रमोद साहब
जी, मैं जम्मू इंडिया से प्रमोद सबरवाल हूँ।
जी शकरवाल, बहुत खुशी होती है जब आप फोन करते हैं बड़ी दूर से हमें। जी क्या पूछेंगे आप इनसे?
आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि बस हम फोन किए बिना रह नहीं सकते।
बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी, आप इनसे बात कीजिए।
तो
हमारे
जो मेहमान आज बैठे हैं इनको पहले तो मैं सलाम कहूंगा।
सलाम अलैकुम जी।
और वाकई इन्होंने एक बड़ी पुरानी हमें वो याद दिला दी, वो पी टीवी इन्होंने कहा तो पहले ये भारत में काफी मशहूर था ये पी टीवी के प्रोग्राम जो थे, जैसे इन्होंने बकरा बोला और भी बड़े मजाहिया प्रोग्राम थे जैसे 50-50।
जी हाँ,
और भी बहुत अच्छे प्रोग्राम थे जो कि इंडिया में लाइक किए जाते थे
जी।
तो खैर उसके बाद तो फिर पी टीवी यहाँ पे आता नहीं है, अब तो हमें इंडिया से ही देखने पड़ते हैं प्रोग्राम। तो लेकिन वाकई एक बड़ी पुरानी याद इन्होंने दिला दी।
वैसे मनोज तो खुश है अगर आप इंडिया के प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि मनोज के प्रोग्राम बुनियादी तौर पे तो इंडिया से ही नशर होते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रमोद। हमारे 2-3 कॉलर्स और लाइन पर हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे साथ हैं सलीम, ये भी कश्मीर से फोन कर रहे हैं। जी सलीम साहब।
सलीम जी को मेरा भी सलाम।
जी मेरी तरफ से आपको। जी जी सलीम, सलीम जल्दी से बोलिए। मेरा ख्याल है कि जी। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका?
मैं सैयद बशारत पटन कश्मीर से बोल रहा हूँ।
अच्छा, बशारत साहब हैं। जी 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 बशारत साहब।
मैं वाइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम को मेरे तरफ से प्यार भरा
जी सलाम। अगर जल्दी आप सवाल पूछ लें प्लीज, टाइम नहीं है। जी क्या सवाल है?
आपके गेस्ट को मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो शो है, आप जो लिखते हैं, क्या ऐसा कुछ लिखते हैं ये दोनों मुल्कों के जो हालात हैं उनमें बेहतरी आए?
अच्छा, मेरे ख्याल है बशारत इस पर बहुत कई सवाल हो चुके हैं इसी मसले पर, तो इसको आप अगर इनका पहले से सुने प्रोग्राम शुरू से, तो इस पर हम अभी भी बात कर चुके हैं। उन्होंने बात की, उन्होंने एक पूछा था शोएब ने कि क्या आपने फिल्मों में काम किया या फिल्मों के लिए लिखा, आपसे मनोज
जी। हाँ जी जी, फिल्में तो मैं अभी देखी, क्या है कि कुछ फिल्में मैंने की लेकिन वो रिलीज तो नहीं हो पाई, लेकिन अब कुछ चूंकि भाभी जी हमारा अभी सुपर डुपर हिट हो चुका है ये शो, तो अभी कुछ अच्छी फिल्में हमारे लिए हमारे सामने आ रही हैं और अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं अच्छे, तो बहुत जल्द जो है हम लोग कुछ अच्छी फिल्में चुनिंदा फिल्में करने जा रहे हैं।
अच्छा अच्छा, मैं ये पूछूंगी क्योंकि रोज बरोज जो एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि अब कमर्शियल वैल्यू जो है चीजों की ना वो बढ़ती जा रही है, तो जो फनकार है उसके लिए अब ये तस्वीर नहीं है कि उसके लिए भूखा मरना जरूरी है, चाहे वो राइटर हो चाहे वो एक्टर हो। तो आप ही समय आप फुल टाइम आपका प्रोफेशन जो है वो यही है, लिखना?
जी बिल्कुल, फुल टाइम प्रोफेशन मेरा लिखना ही है। बिल्कुल, मैं लिखता हूँ, इसके बाद जो मेरा शौक है वो है गाने का, म्यूजिक का।
हाँ।
गजलें सुनना, गजलें गाना, तो इससे जब थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं गजलें सुनता हूँ, गजलें गाता भी हूँ।
वैसे तो मैंने आपकी गजल निकाल रखी है यूट्यूब पे, मुझे मिली, और ये आपने कंपोज भी खुद ही की?
जी मैंने कंपोज खुद की थी है।
तो फिर आपने इसको ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाया? आपने
देखिए वही मसला हो जाता है कि म्यूजिक एक ऐसे मेरी म्यूजिक जो है मेरी पहली मोहब्बत है
जी,
और मैं कहता हूँ कि म्यूजिक मेरी मोहब्बत है और राइटिंग मेरी घरवाली है।
अच्छा, तो घरवाली से ज्यादा अच्छा सलूक करना पड़ रहा है आपको, मोहब्बत को छुपा छुपा के रखना पड़ रहा है।
मोहब्बत के पीछे आदमी भागता है, तो मैं म्यूजिक के पीछे बहुत भागा। म्यूजिक से इतनी मोहब्बत की मतलब पूछे मत, मतलब महफिलें हो रही हैं सब रात में, और बहुत बहुत अच्छी निश्चित में बैठना उठना अच्छे लोगों के बीच में सब सारी चीजें, लेकिन बावजूद इसके जो है जब हम अपनी चीजें जो है वो कहने की प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने कोशिश किया करते थे, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते थे उन चीजों को, तो
अच्छा।
शायद जो है किस्मत नहीं चाहती थी कि हम मतलब हम अपनी प्रेम मतलब जो हमारी मोहब्बत है वो हमें मिले।
हाँ।
तो राइटिंग से हमारी शादी हो
अभी गई। अभी तो आप छोटे हैं, अभी आपके पास वक्त है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और अपने सुनने वालों को मैं इनकी गजल सुनवाती हूँ जो इन्होंने खुद ही कंपोज की है। आप फैसला कीजिए कि मोहब्बत के पीछे भागना मुनासिब है घरवाली के साथ रहना। तो लीजिए सुनते हैं गजल, और इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफिज़ भी कहूँगी, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।